ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी राज्य में एक व्यापारी था, रेशम का व्यापारी, मसाले और सुगंध का व्यापारी, और वो बहुत प्रसिद्ध था। उसके जैसा कोई चतुर बुद्धिमान व्यापारी उस शहर में कोई नहीं था, और निरंतर उसकी यही कोशिश रहती थी कि मेरा व्यापार और बढ़े और बढ़े। दिन रात बुद्धि में केवल सिल्क, स्पाइसेस, परफ्यूम, रेशम, सुगंध, इत्र और मसाले। जहां जहां से उसको इन तीन चीजों के विषय में जो भी जानकारी मिलती थी वो तुरंत प्राप्त करना चाहता था। कहां कौन सा भाव है, क्या मोल है, सब उसे पता था। एक दिन उसने सुना कि शहर में कोई योगी आया है, कोई सूफी फकीर आया है, और उसे जो भी प्रश्न पूछा जाए वो उसका उत्तर देता है, कुछ भी, कोई भी प्रश्न। उसके मन में उत्कंठा जागती है कि जाकर मैं अपने व्यापार के विषय में, मसालों के विषय में, सुगंध के विषय में, रेशम के विषय में और जानकारी प्राप्त करूं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर यह सारा सामान गुड क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का सहज मिल सके। जैसे ही उस योगी के पास यह व्यापारी पहुंचता है, इससे पहले कि व्यापारी कुछ कहता है, वो योगी कह देता है, तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी खुश हो जाता है, कहाँ? उसे वो एक नक्शा देता है और कहता है, हिमालय की चोटी पर 3 दिन 3 रात तुम वहां जाओ और वहां बैठो, और जब वहां बैठोगे, जैसे ही 3रा दिन पूरा होगा, अचानक एक द्वार खुलेगा, अचानक तुम्हें कुछ मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। वो व्यापारी अत्यंत प्रसन्न, सबसे तेज वाला घोड़ा लेता है अपना, हिमालय की चोटी पर पहुंचता है, हिमालय के तलहटी में, और फिर बाद में उस चोटी तक जिसका उसे नक्शा दिया गया था। और 3 दिन और 3 रात न खाना न पीना, उपवास और प्रार्थना, और आंखें बंद करके बैठ जाता है जैसे उस योगी ने कहा था वैसे। और 3 दिन पूरे होते होते जब आंख खोलता है बीच बीच में, फिर देखता है कहीं कुछ द्वार खुला, पर 3रा दिन भी पूरा हो जाता है, 3री रात भी पूरी हो जाती है, परंतु कुछ भी नहीं मिलता, और क्रोध से भर जाता है। 3 दिन 3 रात आंखें बंद करके बस एक ही चिंतन था, सुगंध, इत्र, मसाले, रेशम, सिल्क। क्रोध में आकर वापस उस योगी से कहता है कि तुमने कहा था कुछ मिलेगा, कोई द्वार खुलेगा, कुछ प्राप्ति होगी, पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। वो योगी कहता है, जो नक्शा तुम्हें दिया था और जिस चोटी पर तुम बैठे थे वहीं एक नदी बहती थी, और उसी नदी में और उसी नदी के तट पर ढेर सारे हीरे थे, पर तुमने उन हीरों को नहीं देखा। वहीं प्रकृति का सौंदर्य था, वहीं जीवन का संगीत था, पर तुम्हारी बुद्धि में उन तीनों दिन और तीनों रात संसार ही चल रहा था। तो जब तीन दिन के लिए यहां आए हैं, और यहां भी नदी बह रही है, और ये भी पर्वत का एक शिखर है, यहां भी संगीत है, यहां भी सौंदर्य है, यहां भी हीरे बिखरे पड़े हैं, परंतु ध्यान मग्न चेतना तीन दिन और तीन रात केवल जहां से आए हैं वहां का रेशम और वहां की इत्र और वहां के मसाले का यदि चिंतन चल रहा है और मनन चल रहा है और संसारी बुद्धि में घूम रहा है, तो यहां आना और यहां आने का त्याग कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ा त्याग करके सब आए हैं, तो यहां आना सफल हो। केवल मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, तपने के लिए आए हैं। साधक की भांति आए हैं, छोटे बच्चे जैसा बन जाना है। मुझे कुछ भी पता नहीं, अब मैं चालू करता हूं। ज्ञान का अहंकार और ज्ञान का भ्रम ही सबसे बड़ी बाधा है आगे बढ़ने में। मैंने सब कुछ जान लिया है, फिर से उस छोटे बच्चे के समान बन जाना, जिसके मन में आश्चर्य है, जिसके मन में विस्मय है, जिसके मन में उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी से भरा है। वो क्या है, क्या है, क्या है? और जब तक यहां है, अपने मन को इतना सूक्ष्म कर दो कि यहां की तरंगों को कैच कर सको। योगी वो होता है जिसकी इंद्रिय सूक्ष्म हो जाती है, जिसका मन सूक्ष्म हो जाता है। योगी हवा से हाथ गुजारता है तो फील करता है इस पवित्रता को, इस हवा को, मॉइस्चर को। एक एक पेड़ क्या कह रहा है, एक एक फूल क्या कह रहा है, उसे सुनाई देता है। जहां अभी आप बैठे, न मालूम कितनी बार यहां भगवान का अवतरण हुआ, इसी हॉल में पता नहीं कितनी दादियों ने मुरलियां चलाई। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, पैरा साइकोलॉजी में। जिस शब्द व्यक्ति ने जो शब्द कहा, वो शब्द आकाश में रहता है, क्योंकि शब्द अविनाशी है, ध्वनि अविनाशी है, ध्वनि का नाश नहीं किया जा सकता। जो कुछ कहा गया है वो सब कुछ सेव्ड है। भगवान के वो महावाक्य इन हवाओं में सेव्ड है, परंतु हमारे मन की फ्रीक्वेंसी इतनी सूक्ष्म हो जाए कि मन उन तरंगों को पकड़ पाए। और ये तभी होगा जब इस भट्टी में तीन नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो यहां आना, क्लासेस सुनना, नोट्स लिखना, चार धाम की यात्रा करना, मुरली सुनना, सौगात लेना, भोजन करना, यहां वहां थोड़ा घूमना, केवल एक यादगार रहेगी, परंतु परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर वन, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, आशा है सबने कर दिया हो। अगले 3 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श ना हो शरीर को, बंद कर दो और बैग के अंदर लॉक्ड, ना संसार में हमें कोई याद करे ना हम संसार में किसी को याद करें। 3 दिन के लिए संसार से कनेक्शन कट ऑफ, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, कम से कम 3 दिन जब तक यहां है। जिस दिन यहां की अंतिम क्लास पूरी होगी और जाने का होगा उसी दिन मोबाइल ऑन करना। रूल नंबर 2, आपस में बातचीत बंद। गहरी साधना बिना गहरे मौन के नहीं हो सकती। बातचीत करते करते तपस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन को सूक्ष्म करने के लिए मुख बंद। ये भी करूं, वो भी करूं, इसको भी मिलूं, उसको भी मिलूं, यहां भी जाऊं और वहां भी जाऊं, तपस्या नहीं होगी। ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, कोई नई पॉइंट मिल जाएगी किसी क्लास में, परंतु तपस्या अनुभूति का नाम है और अनुभूति इतनी सस्ती नहीं है। विवेकानंद ने कभी धर्म की परिभाषा दी थी, रिलीजन इज एक शब्द में रियलाइजेशन, अनुभूति। रिलीजन ये नहीं किसने क्या पढ़ा है, कितने किसना सुना है, कब से वो अध्यात्म के ज्ञान में चल रहा है। धर्म अर्थात अनुभूति, प्रतीति। एक पल की अनुभूति काफी है, एक पल का शरीरीपन, एक पल का प्रभु प्रेम का अनुभव, ऐसा गहरा अनुभव कि आंखों से आंसू बह जाए, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाए पूरे शरीर पर। अनुभूति अर्थात जो शरीर पर प्रकट हो, अनुभूति अर्थात जो शरीर पर प्रकट होगी वो है अनुभूति। है सूक्ष्म, है अत्यंत सूक्ष्म मन की, परंतु उसका प्रागट्य शरीर पर होगा। अचानक रोमांच, अचानक आंसू, कंपन, कुछ तो होगा जो अष्ट सात्विक भाव, 8 डिवाइन इमोशंस का जो वर्णन है, कुछ तो होगा शरीर पर। वैसे बैठो तो यहां दर्द और वहां दर्द, और जब अनुभूति होती है टाइमलेसनेस हो जाता है, समय रुक जाता है, ईगोलेसनेस। फिर व्यक्ति देखता नहीं कितने बजे और क्या बजे। तो दूसरा नियम, आपस में बातचीत बंद। जो प्रबंधक है, प्रशासन में है और जिनको बोलना है उनकी बात अलग, पर बाकी सभी को बोलने का कोई काम नहीं है। और जो बोलने बिना रह ही नहीं सकते, कम से कम जो दूसरा मौन में है उसकी साधना और उसकी तपस्या हम भंग ना करें। चुप। आई शैल स्पीक टू धी इन साइलेंस। यदि भगवान की आवाज सुनना है तो पहले स्वयं शांत होना पड़ेगा। मन के कोलाहल में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। मन का मौन सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मुख का मौन है। चुप। हमें याद है जब हम इस ज्ञान में भी नहीं थे, बहुत पहले जब 16 वर्ष के थे, 16-17, और 12th स्टैंडर्ड पूरा हो गया था और एग्जाम दे दी थी। अब तक का जीवन हलचल का, और जैसे सभी बच्चे शरारत करते हैं, और अचानक एक किताब हमारे हाथ में आ गई जो हमारे पिताजी चाहते थे कि हम मेडिकल की पढ़ाई करें। महाराष्ट्र में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है वर्धा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा वहाँ एक चौथा सब्जेक्ट था गांधीयन थॉट्स और उसकी स्टडी करनी पड़ती थी और वो जब तक पास नहीं करे उस मेडिकल कॉलेज में नो एंट्री। तो वो किताबें ले आए, छोटी छोटी किताबें थी, एक थोड़ी बड़ी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सत्य के प्रयोग एम के गांधी। तो हमें पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि एग्जाम पास करनी है, एंट्रेंस एग्जाम। और वो किताब आई और हम उसे पढ़ने लगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इंग्लिश की किताब थी, छोटी सी थी, एब्रिज्ड वर्शन, कंसाइज वर्शन, ओरिजिनल नहीं, थोड़ा छोटी। और वो पढ़ते 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 अचानक कुछ हो गया। जीवन जो संसार की ओर जा रहा था अचानक अध्यात्म की ओर टर्न हो गया और हम मौन में चले गए। और वो मैं मौन एक दिन या दो दिन का नहीं था, और वो मौन एक हफ्ता और दो हफ्ता का नहीं था, 6 मास। किसी से कुछ भी नहीं बोला, चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस। हमारे पिताजी को, घर वालों को चिंता हो गई थी, इसे कहीं डॉक्टर को दिखाओ, क्या हो गया, ये बोलना ही बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं बोलता। और एक दूसरी किताब थी, फटी पुरानी, घर पर रखी हुई थी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस ऑफ डी सेल्स। वो किताब में लिखा था, मेरे हृदय में प्रभु प्रेम का तीर चुभा है, खून बह रहा है और रुक नहीं रहा है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। जो जो लेखक के साथ हो रहा था, हमें लगा हमारे साथ हो रहा था, उस सत्य के प्रयोग किताब में लिखा था कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। लेखक ने लिखा, मैंने झूठ बोला और मैंने पश्चाताप किया। लेखक ने लिखा कि मैंने सिगरेट बीड़ी पी और फिर पश्चाताप किया, पिताजी को दुख दिया, और हमें लगा कि लेखक ने जो पाप किए हमने भी ऐसे ही पाप किए, ऐसे हमने कुछ किए नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगा कि यही हमारे साथ भी हो रहा है। और वो पढ़ते पढ़ते ही, और ऐसा मौन और ऐसा गहरा मौन, ऐसी अवस्था कि प्रभु प्रेम का जन्म हुआ और अचानक संसार से वैराग आ गया। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, इतनी खुशियां, सब लोग मना रहे घर पर। उस समय पीसीबी और पीसीएम, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ग्रुप्स रहता था, किसी में 95%, किसी में 97%, कहीं पर भी एडमिशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जहां चाहिए। परंतु हमारे जैसे संसार से पैर उखड़ गए थे, वैराग में मन स्थित हो गया था, यह सब व्यर्थ है, हमारे कुछ भी काम का नहीं है, और तब से खोज चालू हो गई थी। आगे कहानी बड़ी है, उसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा मौन, तीसरा नियम, इस कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना, जितना हो सके। साधना एक ही स्थान पर बैठकर की जाती है। संसार में जहां हम रहते हैं वहां तो कर ही रहे हैं तपस्या, परंतु यहां खास तपस्या के लिए आए हैं। स्पिरिचुअल क्वारंटीन, स्टॉप द मोमेंट। तो इन तीन नियमों को बुद्धि में रखना है। अगर नहीं किया है, मोबाइल बंद, तो क्लास पूरी होते ही कर देंगे, जिससे बात करनी है कर लो, क्योंकि ये भट्टी अर्थात एक ऑपरेशन थिएटर है। यहां पर ऑपरेशन करना है मन का, और बहुत गहरा है। और ऑपरेशन जब होता है तब रेड लाइट लगता है बाहर, रिश्तेदार रिलेटिव्स को अलाउड नहीं है। और वर्तमान समय संसार का वातावरण दिन ब दिन विकारी मायावी होता जा रहा है। समझ नहीं आता है क्या माया है, जो उस दिन भी कहा माया का अंतिम रूप होगा भगवान उवाच, माया का अंतिम रूप होगा भगवान। तो इस मार्ग में कहीं पर भी भटकना नहीं है, अटकना या लटकना नहीं है, छटकना नहीं है और मटकना नहीं है। दादी जान की अपनी क्लासेस में ये कई बार कहती थी, योगी वो जिसका लक्ष्य उसके सामने निर्धारित है, निश्चित है, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड। अमीर का बेटा देखा, दिल हुई शादी की और खलास, सुबह की साकार मुरली। तो ये चार बातें हैं और इन चार बातों की हम चार चार बातें लेंगे, ऐसी टोटल 16 बातें। सबसे पहला, चटकना। चटकना के कई सारे अर्थ होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में चटकना अर्थात टूटना, कांच चटक जाता है। चटकना अर्थात लड़ाई, फाइट, लड़ाई। बाबा ने कई बार कहा है, ये संगठन एक किला है, लून पानी ना हो। संगठन के किले से बाहर जाते ही क्या होता है, विकर्म चालू हो जाते हैं, पाप कर्म चालू हो जाते हैं, माया आकर्षित करने लगती है। इसके लिए इस किले से बाहर नहीं जाना है। इसमें चार बातें हैं। पहली है मिसअंडरस्टैंडिंग, दो व्यक्तियों के बीच में गलत फहमी। एक मोमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग काफी है सालों के लविंग रिलेशंस को नष्ट करने के लिए। जन कितने सालों से प्रेमपूर्ण संबंध जिसके साथ है और एक पल की गलतफहमी हो जाती है। रिश्तों का कभी भी आत्महत्या नहीं होती है, कत्ल होता है, खून किया जाता है। दीदी दादी का प्रशासन ऐसा था कि जब भी दादी या दीदी के पास कोई भी किसी की भी बात आती थी, दोनों भी तुरंत बिलीव नहीं करते थे पूरी जांच पड़ताल किए बिना। किसी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आती है, ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, पर क्या हम किसको कितना जानते हैं, हमें किसी के बारे में क्या पता है। पति पत्नी एक साथ रहते हैं 40 साल, फिर भी कह नहीं सकते कि मैंने उसको जान लिया। दूसरों को तो छोड़ो, हम अपने आप को ही नहीं जानते, या जानते हैं? मार्क ट्वेन ने लिखा है कि मैं चर्च में गया, पीछे की सीट पर बैठा, प्रवचन चला, पादरी प्रवचन कर रहा है, दान पर प्रवचन कर रहा है, डोनेशन पर, कि प्रभु के कार्य में समर्पित करो। क्या करोगे, सब कुछ रखकर, सब यहां धरा के धरा रह जाएगा। एकदम प्रवचन सुनते सुनते मन में ऐसे भाव उमड़ पड़ते हैं कि आज जैसे ही प्रवचन खत्म होगा और जैसे चर्च में दान की पेटी एक व्यक्ति लेकर घूमता है, सोचता है जितने मेरे पास पैसे अभी है जेब में सब के सब दे दूंगा। ऐसे भाव उमड़ पड़ते हैं कि जीवन व्यर्थ है, वैराग जागता है उस प्रवचन को सुनकर। दान पर प्रवचन पूरा होता है, दान की पेटी घूमना चालू हो जाती है। सोचता है पूरे के पूरे पैसे थोड़ी देने होते, थोड़े तो अपने लिए भी रखने हैं, भीख थोड़ी ना मांगनी है। दान की पेटी दूसरे रो में आती है। पहले सोचता था $10,000 जेब में रखे, 10 के 10 दे दूंगा। फिर सोचता है नहीं 8 देता हूं, 8,000। फिर सोचता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, भगवान को क्या जरूरत है, भगवान के राज्य में तो संपन्नता है और चर्च में इतने सारे लोग हैं, सभी दान कर रहे हैं, मैं क्यों। सोचता है नहीं नहीं आधे दूंगा, $5,000। धीरे 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 कहता है ये भी ज्यादा है, 2,000 ठीक है। फिर सोचता है 1,000 ठीक है। दान की पेटी बस नजदीक ही आ रही है, देखता है बाकी लोग इतने दे रहे हैं, मैं ना भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। और जब दान की पेटी सामने आती है, इधर उधर देखता है और कोई नहीं देख रहा, उसमें से निकाल लेता है। और जब चर्च की सीढ़ियां उतर रहा होता है, सोचता है ये मैंने क्या किया, ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, सोचा क्या था और वो हो गया क्या। हम अपने आप को कितना जानते हैं। इस भट्टी का एक लक्ष्य रखो, मुझे अपने आप को जानना है, अपनी टेंडेंसीज को, अपने संस्कारों को, अपने हैबिट्स को, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपने एडिक्शंस को, अपने हैबिट पैटर्न्स को। और ये काम केवल मौन और साइलेंस में ही हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग। रोज अमृत वेला, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने दुख दिया था और उनसे माफी मांगनी है। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमें दुख दिया, हमें ऐसा लगता है, और उन्हें माफ कर दो, बेशर्त माफी, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आत्माओं को हमें माफ करना है, क्यों, किसके लिए, उनके लिए, अपने लिए, अपने लिए। क्योंकि किसी के प्रति भी हमारे मन में यदि घृणा का भाव है तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते। परमात्मा महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि घृणा है मन में तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। अपने लिए हमें उन्हें माफ कर देना है, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल पार्डन, तुमने जो कुछ किया होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो हमारे ही किसी जन्म के पाप का परिणाम है। तो सभी करेंगे ये काम कल सुबह, बीच में करना है, 4:30 और 5:45 के समय, योग जब पूरा होता है उस समय। आत्माओं को इमर्ज करो आंखों के सामने, देखो किन किन को हमने गलत शब्द बोले, किन किन को दुखाया, दर्द दिया, पीड़ा दी, स्वार्थ, किन किन के प्रति छलावा किया, छल कपट किया, हर्ट किया उनकी फीलिंग्स को, जाने में अनजाने में, विटिंगली अनविटिंगली, नोइंगली अननोइंगली। कई बार हमें पता नहीं चलता है पर हमारी वजह से कितने लोग हर्ट हो जाते, और जब तक उनकी बद्दुआएं चल रही है साथ में, हमारा पुरुषार्थ हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। इसके लिए आत्माओं को इमर्ज करो और माफी मांगो और माफ कर दो। और तीसरा भी एक काम है, जिसने हमें मदद की है इस ज्ञान मार्ग में, उन सब के लिए धन्यवाद का भाव। उन माता पिता के लिए धन्यवाद जिन्होंने जन्म दिया, उन शिक्षक के लिए। वो हर आत्मा अस्पताल में पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई एक आया और उसने पूछा, उसके लिए थैंकफुलनेस। रोज अमृत वेले अगले 6 मास के लिए सभी के लिए ये काम है, next 6 months विदाउट फेल ये काम करना है। एक समय आएगा कि मन में जो भारीपन है अचानक हल्कापन आ जाएगा, जैसे किसी ने माफ कर दिया, वो बोझ उठ गया, क्योंकि सभी आत्माएं जुड़ी हुई है और शुभ भावना और शुभकामनाओं में सबसे ज्यादा शक्ति है। संडे की मुरली, मास्टर दाता बनना है तुमको, न्यूनेस लानी है संबंध संपर्क में, कैसे? दाता बनने से, और संकल्प में शुभ भाव, शुभकामना। ये पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके जाना है इस भट्टी से। यहां बैठे बैठे वहां क्या करना है इसकी प्लानिंग करके जाना है। और एक काम जो हम हर भट्टी को देते हैं, वापस जब पहुंचेंगे, कौन सी तारीख को पहुंच रहे दिल्ली वापस? 14th, तो 15th को आपकी भट्टी चालू होगी। रियल भट्टी चालू कब होगी? 15 तारीख को। ये जो 3-4 दिन है ये तैयारी है, असली भट्टी तो वहां करनी है। यहां जो आकर शांति का अनुभव हो रहा है, आहा, अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है, आहा, और बाबा के प्यार का अनुभव हो रहा है, आंसू रुक नहीं रहे, ये प्रभु प्रेम मधुबन का दिया हुआ है। यह अशरीरीपन मधुबन का अशरीरीपन है, ये शांति मधुबन की शांति है, यहां से जाते ही चली जाएगी। अपनी भट्टी खुद, यह सार्वजनिक भट्टी है। इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर यदि व्यक्तिगत भट्टी में नहीं होगा तो यहां आना केवल एक एंटरटेनमेंट, बस और कुछ नहीं। कोई यहां से पूछेगा वहां जाकर, कैसी रही भट्टी? बहुत बढ़िया थी, ये भी क्लास किया, वो भी क्लास किया, ये भी खाया और वो भी खाया, और इधर भी गए और बाबा पहाड़ी भी घूम के आए, और ये पॉइंट बहुत अच्छी थी, और ये क्लास तो इतनी गहरी थी, जरूर एक बार सुनना तुम। पर तुमने क्या किया सुनकर? जैसे थे वैसे ही रह गए। ट्वेंटी वन डेज भट्टी और टॉपिक कल सुबह दिया जाएगा, कल परसों, जब तक मधुबन में है, टाइम 2 से 3:30 के बीच, अमृत वेला। जल्दी सो जाओ ताकि 1:30-2 बजे उठ सको, रात के सन्नाटे में तपस्या होती है। रात में जो आवाज आती है ना, इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट तपस्या इज डन, उस आवाज को सिबिलेंस कहते हैं इंग्लिश में। उस आवाज में, पिन ड्रॉप साइलेंस में, ऐसे स्थान पर, ऐसे मधुबन में आकर शांति स्तंभ पर बैठ जाओ, कुटिया में बैठो, सन्नाटा है, सुई भी गिरे तो आवाज आए, ऐसा मौन वहां दिया जाएगा। एंड इट शैल बी गिवन टू यू एट दैट आवर, और तुम्हें तब दिया जाएगा। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, ऐसा होता है, वैसा होता है, भय है, एंग्जाइटी है, फियर है, समस्याएं है, ऑफिस में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है, सेवा केंद्र पर ऐसा हो रहा है, क्या करूं? किसी को कुछ मत पूछो, परमात्मा सभी उत्तरों का सागर है, ओशन ऑफ आंसर्स। अमृत वेला ब्राह्मण जीवन की हर समस्या का हल है। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कल केवल मन को शांत कर दो, बस। चेतन शांत होते ही अवचेतन में सब कुछ है समाया हुआ। तो सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग, ये फाइट खत्म करनी है। कोल्ड वॉर चालू है दो व्यक्तियों के बीच में, दो ब्राह्मणों के बीच में, एक उधर से आता है, दूसरा इधर से जाता है। एक पेशेंट हमारे ओपीडी में आती थी, कहती थी यहां दर्द होता है छाती में, हमने कहा ईसीजी करके आओ, ईसीजी नॉर्मल, कब दर्द होता है? और कोई जांच की है? एंजियोग्राफी भी हो चुकी है, कुछ था नॉर्मल, 2D echo नॉर्मल, TMT नॉर्मल, पर यहां दर्द होता है। हमने कहा कब होता है दर्द? उसने कहा हमारे सेवा केंद्र पर एक आत्मा है, जैसे वो सामने आती है यहां दर्द चालू हो जाता है, वो दिखते ही सीवियर पेन, कोई दवाई दो इसकी। कौन सी दवाई दू? मेंटल ब्लॉकेजेस है, कोरोनरी ब्लॉकेजेस नहीं है, साइकोलॉजिकल आर्टरियल डिसीज है, कैड नहीं है, पैड है। मिसअंडरस्टैंडिंग पहला, दूसरा ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, तुम्हारी वजह से। अब तक मन में है कि हमारे मां बाप ने हमें जैसी तरबियत देनी चाहिए थी नहीं दी, जैसे हमें पढ़ाना चाहिए था सिखाना चाहिए नहीं सिखाया, मेरा जो बड़ा भाई है उसके तरफ ज्यादा ध्यान दिया, मेरे पर कम ध्यान दिया गया। अब तक मां बाप के खिलाफ कंप्लेंट है, हमको हिंदी मीडियम में पढ़ाया, हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए था, अभी तक कंप्लेंट है, हमको मेडिकल में एडमिशन चाहिए थी, क्या होता था अगर थोड़ा सा डोनेशन दिया होता तो, हमको आर्ट्स और कॉमर्स में एडमिशन दे दी, हमको इंजीनियर बनना था हमको बनने नहीं दिया। मां बाप के खिलाफ कंप्लेंट भरी है मन में, पति पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट भरी है एक दूसरे के मन में, तुम्हारी वजह से, तुम ही सभी दुखों का कारण हो। साइकोलॉजी कहता है कि हर पति को अपने संपूर्ण जीवन काल में चार बार तो यह संकल्प आता है कि जाकर मर दूं, कर नहीं पाता पर विचार तो आता है। फोर टाइम्स इन लाइफ टाइम, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आई अलोन एम रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, उसने जो कुछ भी किया, परवश थी वो आत्मा, और जो कुछ भी किया, और मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, गाड़ी में सब लोग जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर, बाकी सब ठीक, खरोच लगी बस, हम बैठे ऑपरेशन हॉस्पिटल में डेढ़ मास पैर लटका के, वाई मी, इंग्लिश में किताब है एक, वाई मी, मैं ही क्यों हमेशा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, क्यों? कंप्लेंट का भाव भरा है। तीसरा, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। रिलेशनशिप में एक ही रूल है, वो याद रखना है, आई एम रॉन्ग। रिलेशनशिप में कौन सा रूल है? आई एम रॉन्ग। सब झगड़े खत्म, पर हम क्या कहते हैं? मैं राइट हूं। पहले तुम मानो ये कि तुम गलत हो, उसके बाद आगे की चर्चा होगी, तब तक बात ही नहीं करना है। और लास्ट, रूसना रूठना, नाराज हो जाना, अपसेट हो जाना, बार बार रूठते, बार बार रूठते। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों से रूठा हुआ है, स्टूडेंट्स बहन जी से रूठे हुए हैं, ज्ञानी छोड़ दिया। बाबा कहते हैं तुम बहन जी से रूठे, निमित्त आत्मा से, मैंने क्या किया? मेरा क्या दोष? रूठना रूसना ये कमजोर आत्मा की निशानी है, क्योंकि जब हम रूसते रूठते हैं तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा हमें मनाने आ जाए, क्योंकि जब वो रूठा था तो हम मनाने गए थे, अब हम रूठे तो वो हमें खुश करे, कुछ तो करे हमारे लिए, कोई गिफ्ट तो दे दे। गिफ्ट भी दे दिया ना तुरंत हम मान जाएंगे, कुछ तो बस थोड़ा सा दे दे, इतनी बात कर ले, हम तो तैयार है बात करने के लिए, पर वो है कुछ करता ही नहीं। चटकना अर्थात फाइटिंग, इन चारों चीजों को खत्म करना है, और अभ्यास करेंगे अमृत वेला, आत्माओं को माफ कर दो, आत्माओं से माफी मांग लो। उसके बाद है मटकना अर्थात शो ऑफ, दिखावा, इतराना। चार चीजों के बारे में, ज्ञान का अहंकार, मैंने बहुत जान लिया है, इतनों का कोर्स कराया, इतने क्लास, इतनी क्लासेस, इतनी मुरलिया, ये सब का पद से कोई संबंध नहीं है। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता आगे है, इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। किसने कितने क्लासेस, कोई ऊपर भगवान बैठा हुआ है कि कितने कोर्स कराए, कितनों को कन्याओं को निकाला और कितने कुमारों को निकाला और कितनी प्रदर्शनी समझाई, कोई आसमान पर बैठा नहीं है लिखते हुए, और जो पुण्य हम कर रहे हैं और जो भी हमसे अच्छा काम हो रहा है वो अपने आप उधर रिकॉर्ड हो रहा है। ये इच्छा नहीं रखो कि सेंटरों पर कुमार नाराज हो जाते जब उनका नाम नहीं लिया जाता। बहन जी ने सबका नाम लिया और हमारा ही नाम नहीं लिया। इतनी बड़ी सेवा भी, सबसे ज्यादा तो सेवा हमने की भाग भाग के गाड़ी से, और हमारा नाम ही नहीं। बहन जी वो थोड़ा टेप रिकॉर्ड जो दिया था ना वो वापस चाहिए। जो दान दिया है वो वापस। ज्ञान का अहंकार, योग का अहंकार, हमारा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। हम इतने बड़े योगी हैं, मैं याऊं हूं, मैं त्याऊं हूं। धारणाओं का अहंकार, होलियर देन थाउ एटीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तुमसे ज्यादा पवित्र मैं हूं, हटो बाजू में। गृहस्थियों के प्रति घृणा का भाव, ये विकारी लोग हैं। धारणाओं का अहंकार, हमारी मुरली कभी मिस नहीं होती है। सेवा का अहंकार, हम कुछ कर रहे हैं क्या संगम पर? संगम पर जो कुछ हो रहा है ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है। अगर वो चाहे और उसकी शक्ति हटा ले, एक सेकंड में बुद्धि पलट जाएगी। उसका वरदान ही हाथ अगर हट जाए यहां से तो क्या हो जाएगा, हम गिर पड़ेंगे। इस भट्टी में आप सब आए हैं, ये भी क्या है? ईश्वरीय कृपा है, दया है, आशीर्वाद है, अनुकंपा है। भक्ति के शब्द है पर इनसे अच्छे शब्द कुछ है नहीं। और उस शिव बाबा का वरदान आशीर्वाद है ये जो यहां पहुंचे, नहीं तो कितने होंगे जिनको आना था पर आए नहीं, समय पर कैंसिल हो गया। और हर ग्रुप जो बाबा से मिलने आता है कई बार तो वही ज्यादा होते हैं जो किसी और के टिकट पर आते हैं, और दिव्य अनुभूति हो जाती है उनको। तो यहां तक पहुंचे ये भी समझो क्या है, ये भगवान ने, नियति ने, ड्रामा ने एक अवसर दिया है फिर से। आज सुबह की साकार मुरली ईश्वरीय सेवा करने का ये अंतिम अवसर है। कुमारियों से मुलाकात, कुमारियों के ऊपर जो बाबा ने कहा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। अब डिसाइड करो क्या करना है। साजन आया है, करोड़ों सजनी आए हैं। Here comes the bridegroom. सेवाओं का अहंकार, हमेशा ये याद रखना है ऊपर एक टंकी है और हम सब कौन है? नल। पानी इस नल से आ रहा है। नल कहे कि देखो मैं पानी देता हूं तो क्या कहेंगे? महिमा नल की नहीं है, टंकी की है। हां धन्यवाद कि उस टंकी ने इस नल को चुना। वो चाहता तो उसके पास नलों की कमी नहीं है, कितने सारे और अच्छे अच्छे हैं। हमसे बुद्धिमान लोग संसार में है, हमसे योग्य लोग संसार में, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ आई है संसार में, इतने सारे हैं। फिल्म एक्टर्स और ये सारे जो लोग, बहुत कलाएं होती है उनमें, बहुत कलाएं होती है, टैलेंट एक्सट्रीम होता है उनमें, हमसे कई गुना अधिक। परंतु भगवान के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, वो एक्टर्स हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। टीवी के एक्टर्स, फिल्म के एक्टर्स क्या कर सकते हैं? हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अशरीरी नहीं बना सकते। वो केवल तुम कर सकते हो। हम हीरो एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। तो कैसा अहंकार और किसका अहंकार? जैसे ही कृष्ण चले गए, दिखाए पांडवों की क्या हालत हो गई। युधिष्ठिर जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे, दरवाजों पर ताले लग गए। अर्जुन जा रहा है, आबू पर्वत के नीचे ही भीलों ने उसको लूट लिया। अर्जुन को इतना शक्तिशाली, वो शक्ति कृष्ण की शक्ति थी। वैसे ही थैंक यू योगा करना है सारे दिन भर में. कौन सा योगा? थैंक यू योगा, शुक्रिया. बीच बीच में बाबा को धन्यवाद. 10 बज गए, बाबा धन्यवाद, अब तक ठीक चल रहा है, अब तक कोई लड़ाई चटकना वटकना नहीं हुआ है. 12 बज गए, बाबा ठीक है, एक बार धन्यवाद. शांतिवन में एक बच्चा था छोटा, तो वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड, मानसिक बुद्धि कम थी उसकी. तो उसने एक बार सूरज भाई जी की कोई क्लास सुन ली, तो उसको उसकी मम्मी ने खिलौना दे दिया, मोबाइल. वो बात करते रहता, हाँ हाँ. तो हम एक बार गए और हमने कहा, किसे बात कर रहे हैं? तो खिलौना है. हाँ हाँ शिव बाबा, मैं हूं, ठीक हूं, ऐसे बात करता था. बीच बीच में बाबा से बात करते रहता था. व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, अपना और किसी और का, और उसको हटा दो. ग्रुप बन गया. ग्रुप बनाने के लिए किसी को ऐड करना होता है ना, और फिर उसको हटा दो. न्यूज टू बाबा, टॉक विद बाबा, या मेरा बाबा उसको नाम दो, और सारे दिन भर मैसेज करते रहो उसको. 10 बजे बाबा अब तक ठीक है, ओके, थैंक यू. अपडेट करते रहो. लोग अपडेट करते हैं ना, हम मधुबन में हैं, एट मधुबन रॉकिंग. वैसे भगवान को अपडेट करो अपनी स्थिति के बारे में, बाबा अभी ठीक है, अभी बहुत खुश हूं, अभी आंसू आ रहे हैं बाबा, रो रहा हूं, अभी अभी कोई जबरदस्त तीर लगा कर गया है, वो भी लिख दो. हर चीज नोट करते जाओ, हर चीज उसको इन्फॉर्म करते जाओ, जैसे दूसरी आत्माओं के साथ शेयर करते हो, भगवान से शेयर करो. और दूसरी आत्माओं के साथ हम जितना शेयर करते हैं, भगवान से शेयरिंग अपने आप कम हो जाती है. अभी अभी किसी के साथ एक घंटा बैठ के सुनाया उसको, मेरे जीवन में क्या क्या दुख है, क्या क्या समस्याएं है, कौन कौन तंग कर रहा है, किसने किसने क्या क्या बोला, इतना सब तो उसको सुना दिया. बाबा के कमरे में जाके बाबा को क्या सुनाओगे? आत्माओं से शेयरिंग करोगे तो परमात्मा से शेयरिंग कम. तो चारों ही चीजें हैं, मटकना, अहंकार, इतराना. ज्ञान हमने क्या समझा है? कुछ भी नहीं समझा. अभी बहुत कुछ समझना बाकी है. अभी तो कुछ भी नहीं पता, सितारों के आगे जहां और भी है. There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare का एक पात्र अपने जूनियर से कहता है कि तुमने जितना समझा है Horatio, सुनो, उससे परे इस संसार में बहुत कुछ है समझने के लिए जो तुमने समझा नहीं है. Than are dreamt of in your philosophy. Hamlet कहता है Horatio से. तो ना ज्ञान का अहंकार, हमेशा समझो मुझे जानना है, ना योग का अहंकार. अभी कहां 10 मिनट अगर कहो कि बैठो बिना हिले डुले, तो कितनी बार हिलते हैं हम, कितनी बार अगर हलचल होती है, शॉल कितनी बार एडजस्ट करते हैं और कपड़े कितनी बार ठीक करते हैं, और कितनी बार लगता है मच्छर है काटू और, पर मच्छर तो है ही नहीं. बेचैनी बेचैनी भरी है अंदर. तो मटकना, उसके बाद में भटकना, इसमें चार बातें. कहां भटकती है बुद्धि? वर्तमान समय बुद्धि सबसे ज्यादा भटक रही है डिजिटल वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा. जितना हो सके रात को 8 बजे के बाद गो ऑफलाइन. हाँ, जिनकी ड्यूटी है, जॉब है, वो जो सब कर रहे हैं, उनकी बात अलग. यहां तक कि प्रकंपन के सिद्धांत कहते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, अगर नींद अच्छी आनी है तो. साउंड स्लीप, एक कंप्लीट डार्कनेस हो, कोई भी लाइट नहीं. यहां पीनियल ग्लैंड होती है, मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, एब्सोल्यूट डार्कनेस, नो सोशल मीडिया, और फिक्स टाइम हो सोने का रोज. ये 3 बातें हैं नींद की. अंधेरा, जल्दी सो जाओ, फिक्स टाइम पर सो जाओ, और खाना थोड़ा जल्दी पूरा कर लो, कम से कम 4 घंटा पहले. योगी का भोजन, रात्रि भोजन सोने से 4 घंटा पहले हो जाए, अर्थात 6 बजे के आसपास, सूर्यास्त से पहले. अभी तो यहां आए हैं, वहां जाने के बाद अपनी नई दिनचर्या बनाना है. सूर्य डूब गया, मुख बंद, न खाना न पीना, निर्जल. बॉडी को समय दो, जठराग्नि शांत हो जाती है। और जितना लेट खाएंगे उतना लेट अमृत वेला उठेंगे, और जितना ज्यादा खाएंगे उतना उठ नहीं पाएंगे, जितना भारी खाएंगे उतना उठ नहीं पाएंगे। शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा हो, बॉडी फूड फ्री रहे जितना हो सके। योगी का शरीर डाइजेशन का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है। खाना खाना खाना, भटकना अर्थात दूसरी पॉइंट है फूड, तीसरा है फैशन, और चौथा है कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। सुख सुविधाओं का जीवन योगियों का जीवन नहीं है। योगी अर्थात तपस्वी, त्यागी, त्याग झलके, रग रग में त्याग भरा हुआ हो, तपस्या भरी हुई हो। और यह तभी होगा जब इन चारों ही प्रकार की माया से मन मुक्त होगा। आज सुबह की मुरली, हरेक किसके लिए परिश्रम करता है? पेट के लिए, पेट पेट पेट। और पेट आज तक किसी का भरा है क्या? द्वापर से कोई है जो कहे मेरा पेट भर गया? नेवर। फिर भी दिन रात खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। तीन बार भोजन और चार बार टोली खाके कोई योगी नहीं बन सकता। योगी अर्थात आत्मसंयम, उसकी इंद्रिया वश में होती है। और जिसने जिह्वा को वश में कर लिया, स्वाद को वश में जिसमें कर लिया, उसकी बाकी सभी इंद्रिया अपने आप वश में हो जाती है। रसेंद्रियों को वश में कर लो, रसेंद्रिय ही वश में नहीं है तो जनेंद्रिय वश में नहीं हो सकती। जो उत्तेजनाएं काम विकार में है वही भोजन में भी है, दोनों सेम है, लस्ट एंड फूड, वही क्रेविंग दोनों तरफ है। एक को हम बहुत बुरा मानते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, बट है उत्तेजनाएं सेम। इसको वश में कर लो तो वो अपने आप वश में हो जाएगी। तो ये चार चीजों में बुद्धि भटकती है, क्या खाऊं। सुबह उठते ही सबसे पहला फोन, हमारे एक डॉक्टर आते थे सेवा के लिए, उठते थे 8 बजे, बीके पहला फोन किचन में, आज क्या बनाया नाश्ता में। फूड, अगर नींद चाहते हो कम हो जाए तो भोजन को कम कर दो, बाकी और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। भोजन कम होते ही नींद अपने आप कम हो जाती है, भोजन अधिक नींद अधिक। और उठ भी गए अगर अभ्यास की वजह से और सब कुछ जबरदस्ती, तो फिर अमृत वेला में नींद। हमारी एक डॉक्टर आती थी, पहले इधर थी फिर कहीं चली गई पढ़ने के लिए, तो एक बार अनुभव सुना रही थी बाबा के कुटिया में। 3 ही दिन के लिए आई मधुबन में, तो सोचा 2 बजे का योग करना है, और सीधा 2 बजे उठ गई और बाबा के कुटिया में जाके बैठ गई। बाबा और मैं बस देखा घड़ी की तरफ, 2 बजे थे। अगली बार जब देखा तो 5 बजे रहते सीधा, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं, इतना जल्दी 3 कैसे घंटे गुजर गए। और फिर उसको एकदम से ध्यान आ गया कि मैं सो रही थी, और उसने देखा पीछे सोफा जो है उसमें माताएं बैठी हुई है, मतलब दूसरों ने मुझे सोते हुए देखा। सोने में कोई ये नहीं है, पर दूसरा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे झुटका लगता है सबसे पहला व्यक्ति काम क्या करता है, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने नहीं देखा तो उसको दिखा कि 5 माताएं पीछे बैठी हुई है। और अभी तो योगी बनने का जो इज्जत का सवाल था, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, और तब उसको ठीक लगा जब 5वीं माता देखी सो रही थी, तब कहीं जाके चैन की सांस ली, योगी स्टेटस इंटैक्ट। शांति स्तंभ पर भी एक भाई, ऐसा भयंकर नींद आ रही है उसको, पूरा झुक गया नीचे तक। उसको कहा भाई क्या है, वो कह रहा था सकाश धरती को। नजदीक से ज्यादा जाएगी ना, कभी इधर गिर रहा है कभी कोई इधर गिरता है। एक बार इसी हॉल में रतन मोहिनी दादी मुरली अमृत वेला करा रही थी, और कई लोग सो रहे थे, माताओं की भट्टी थी, दादी ने बीच में एकदम लाइट ऑन कर दिया और कहा सब माताएं खड़ी हो जाओ, सब खड़ी हो गई। पर माता ऐसी पावरफुल थी कि खड़े खड़े सोने लगी। इफ यू वॉन्ट टू लेसन thy स्लीप लेसन thy फूड. भोजन से सीधा कनेक्शन है. शरीर को बहुत कम चाहिए, बहुत कम. जितना हम खा रहे उससे हमारा आधा पेट हमारा भर रहा है, आधा डॉक्टरों का. तो चटकना, मटकना, भटकना, इन चार चीजों में. और लास्ट है अटकना. अटकते हैं चार बातों में, टाइम, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट. कोई टाइम में अटका हुआ है, पुरानी यादें. कोई उसका जीवन साथी जिसने शरीर छोड़ दिया, अब तक उसकी यादें भूलती नहीं है, वो चला गया, परंतु दिन रात उसी की याद रहती है. ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं, कोविड में कितने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, अभी भी आते तो वही बात करते हैं, उसी की याद आती रहती है उनको. नकी पर मिलते हैं तो वही अपनी पत्नी की याद अभी तक गई नहीं है. 6 मास, 8, 1 साल, 2 साल हो गया, पर वो भूलते ही नहीं है. दिन रात समाई रहती है वो बात, अभी भी लगता है जैसे वो यही है. व्यक्ति में अटक गए हैं, स्मृति में, कोई टाइम में, पास्ट में अटक गया है. अदरवाइज अदर, व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, किसी स्थान में. ये स्थान बहुत अच्छा था, ये स्थान बहुत अच्छा था. अरे था, अब भूलो उसको, वो गया. ट्रेन में हम बैठे, स्थान कितने बदलते जाते हैं. अगर हम कहें कि यही स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जाए ही ना, तो दुख होगा. स्थान बदल रहे, व्यक्ति बदल रहे, समय बदल रहा है, हमें किसी में अटक नहीं. ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में बुद्धि, एक एक चम्मच चम्मच में बुद्धि है. दिखता नहीं है तो बेचैनी आ जाती है, कहां कहां बुद्धि अटकी हुई है. वस्तुओं में हम भूल गए, वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण संसार में और चीजें हैं. पैसों से महत्वपूर्ण वस्तु है, वस्तुओं से भी महत्वपूर्ण सेवा, सेवाओं से भी महत्वपूर्ण संबंध, और संबंध से भी महत्वपूर्ण स्थिति. स्थिति स्टॉप है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. वस्तु है, नुकसान हो गया चलेगा. एडिसन का पूरा के पूरा जितना 1000 आइलैंड में जितनी बड़ी लैब थी पूरी, इतने सालों की मेहनत सब जलकर खाक हो गई, आग लग गई 1910 में. उसके बेटे ने अनुभव लिखा है रीडर डाइजेस्ट में, 1953 के रीडर डाइजेस्ट में. थॉमस एल्वा एडिसन का जो बेटा है वो अपना अनुभव लिखता है कि मैंने मेरे पिताजी को देखा, इतना बड़ा हमारी लैब सारी जल रही है और मेरे पिताजी ऐसे खड़े हैं देख रहे. मैं भाग भाग के गया, पिताजी ये क्या हो रहा है. पिताजी ने कहा कि जाओ अपनी मां को बुला के लाओ, ऐसा ही आग वो फिर कभी नहीं देखेगी. देखो कितनी विशाल आग है. And within 6 months he erected everything again. जो कुछ जल गया था, जो कुछ समाप्त हो गया था, जो कुछ खलास हो गया था, 6 मास के अंदर फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया. कोई दूसरा होता तो दुखी हो गया होता, मेरा घर, मेरा घर. कोई दूसरा होता तो मेरी वस्तु, मेरी वस्तु चली गई. एक जॉब था उसमें धोखा हो गया, कुछ भी हो गया, बिजनेस फेल हो गया, दुखी होकर बैठ जाते, देवाला निकल गया. अटकी हुई है बुद्धि घरों में, व्यक्तियों में. एक व्यक्ति था, चला गया, गया गया, वस्तु चली गई. कोई अतीत की स्मृति को ही पकड़ के बैठे अभी तक. वो समय बहुत अच्छा, वो समय बहुत अच्छा था. अरे वो समय छोड़ो, ये समय अच्छा है. हैप्पी नाउ ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, नाउ दिस मोमेंट. इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी. इस पल में सदी छिपी हुई है, एक पूरी सदी. तो ऐसी हमने कितनी बातें देखी, 16. सबसे पहला भटक, सबसे पहला चटकना. झगड़ा अगर हो गया है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें. सेकंड, दूसरा कारण झगड़े का, ब्लेम गेम नहीं करना है. तीसरा कारण क्रिटिसाइज नहीं करना है. किसको हम क्रिटिसाइज करें संसार में. और ये याद रखना है, जिसकी हम निंदा, हम यदि किसी की एक गुना निंदा करते हैं तो हमारी 2 गुना निंदा होगी. और किसी के एब्सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी की निंदा. सोचो कि वो इस समय वहीं खड़ा है, वहीं बैठा है, एक व्यक्ति था, वो अपने बॉस की बहुत निंदा करता था। जब भी आता था कहता था, अपना बॉस जो है ना उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल गलती करता है, आज उसने ये ग्रामर मिस्टेक की, आज वो ग्रामर मिस्टेक की, पता नहीं इसको किसने बॉस बना दिया। जैसे ही बॉस के केबिन से बाहर निकलता था, ग्लानी करता था कि बॉस की इंग्लिश बहुत खराब है, उसको कुछ नहीं आता, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आते, उसके ग्रामर ठीक नहीं है। दो लोग एक साथ ज्वाइन किए, वो और उसका दोस्त। एक मास के बाद में प्रमोशन होता है, तो जो ग्लानी करने वाला है उसका प्रमोशन नहीं होता है, उसके दोस्त का प्रमोशन हो जाता है। वो जाके कहता है बॉस से कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया आपने। बॉस कहता है क्या करूं, मेरी इंग्लिश ही ठीक नहीं, मुझे वो आपका प्रमोशन ही लेटर बनाते नहीं आया। हम जिसकी ग्लानी कर रहे हैं वो शब्द उस तक कहीं ना कहीं से पहुंचेंगे जरूर। दीवारों के भी बड़े बड़े कान होते हैं। ये मत समझना कि हम जिसके बारे में पहुंच रहे हो उसको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। तो क्रिटिसिज्म, और लास्ट अपसेट नहीं होना है, नाराज रूठना, ये हो गया। चटकना दूसरा बताया, मटकना अर्थात अहंकार, ज्ञान योग धारणा सेवा का। उसके बाद बताया भटकना, किसमें भटकती है बुद्धि, डिजिटल वर्ल्ड से उसको बाहर निकालो, बिना पर्पस के ऑनलाइन जाना ही नहीं है। ऑनलाइन गए, काम हुआ, वापस आ जाओ, वहां रुके तो गए काम से, एक क्लिक एंड ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। यात्रा बहुत ही एक सेकंड की यात्रा है बस। नेक्स्ट बुद्धि भोजन, उपराम करते जाओ, पेट में लगे हुए सब, और पेट कभी भरता नहीं है। उसकी साइज जितना ज्यादा डालो उसमें उसकी साइज बढ़ती है, जितना कम डालो उसकी साइज कम होती है। सतयुग में जो देवता थे उनके लंग्स की साइज जाती थी ज्यादा थी, पेट की साइज कम। ब्रेथ, वो लंग्स बिकम द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, नॉट द स्टमक। और कोविड ने संसार को यही सिखाया कि पेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लंग्स है। भोजन की कमी नहीं थी कोविड में, किसकी कमी थी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट फैशन, ये पहनू वो पहनू, इधर लगाऊं वो लगाऊं, बाल काले करूं, नेल पॉलिश, टैटू, गहने, गजरा, चप्पल, व्हाइट, व्हाइट में भी फैशन, व्हाइट में भी फैशन। हमारा श्रृंगार प्यूरिटी है, ये सब नहीं। नेक्स्ट सुख सुविधाएं का ये तपस्वी जीवन है। नेक्स्ट ये चार, और लास्ट लटकना, टाइम प्लेस पर्सन और ऑब्जेक्ट। ना टाइम में अटकना है, ना व्यक्ति में, ना वस्तु में, ना स्थान में। तो अभी अगले आधे घंटे के लिए पावरफुल योग की अवस्था में हम बैठेंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं पीछे वाले वो सामने आ जाएंगे, कुमार या कुमारिया जो नीचे बैठ सकते हैं, क्योंकि तपस्या नीचे बैठ के की जाती है। सामने सामने आ जाएंगे सभी, और अगले 25 मिनट अंग अंग से ना लगे, अलग अलग हो जाओ। अगले 25 मिनट जिस अवस्था में बैठे हैं, डायरी पेन पेंसिल बंद, जरा भी नहीं हिलेंगे, जैसे पुतला, स्टैचू, स्टैचू करते थे ना बचपन में, स्टैचू, वैसे स्टैचू हो जाओ, हिलना ही नहीं, हाथ भी ना हिले। जो एक पोजीशन ले लो, जहां उंगलियां रख दी बस रख दी, आंखों को स्थिर कर दो एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर, और संपूर्ण समर्पण भाव। इस अवस्था में कमेंट्री के जो शब्द है, शब्दों से पार और शब्दों के बीच में जो अंतराल होगा और जो मौन होगा, उस बीच स्वयं के भीतर प्रवेश करना है। तो एक पोजीशन ले लिया, स्थिर हो गए, और अब हिलना नहीं। इससे यह भी पता चलेगा कि हम कितना समय स्थिर बैठ सकते हैं। जैसे उंगलियां रख दी बस, अब ऐसी ऐसी रख दी तो ऐसी, उंगली ना हिले, जबान भी ना हिले, निश्चेष्ट। तो चले, संसार के अनंत सागर में। चेतना की वह शक्तिशाली तरंग मैं हूं। मन शांत, शरीर की सारी हलचल समाप्त। बुद्धि स्थिर, एकाग्र, कुछ पल के लिए आंखें बंद कर देंगे। वातावरण में जो भी आवाजें हैं, उन आवाजों को सुनने का प्रयत्न करेंगे। मन सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जा रहा है। फैन की आवाज, संगीत, जो भी आवाजें सुनाई दे रही, धीरे धीरे मन को शरीर की ओर लाएंगे और अपने शरीर का अवलोकन करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक। रिलैक्स, चेहरे पर जो मसल्स है, जो तनाव है, ढीला छोड़ देंगे। राइट शोल्डर, दायां हाथ, बायां हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, मन को घुमाएंगे शरीर की ओर। दायां पैर, बायां पैर, रिलैक्स। शरीर पर हो रही सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करेंगे। जो कुछ शरीर के तल पर हो रहा है, साक्षी भाव से उसे देखेंगे। कहीं दर्द है, कहीं सुन हो रहा है पैर, कहीं धूजन, कहीं भारीपन है, सब कुछ साक्षी होकर देखेंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं चैतन्य आत्मा हूं। आंखें पूरा समय बंद रहेगी, संपूर्ण मौन, संपूर्ण अंतर्मुखता, चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। चमकता हुआ मणि हूं, मुझात्मा से संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। लाइट का शरीर, एक एक ऑर्गन लाइट का बना हुआ, शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रकाश ही प्रकाश। फिर से अपने मन को संपूर्ण शरीर में घुमाएंगे, एक साथ सिर, दोनों हाथ, छाती, पेट, दोनों पैर, तरंगे ही तरंगे। संपूर्ण स्थिरता, जरा भी शरीर न हिले, तरंगे ही तरंगे। कपड़ों का स्पर्श तरंगे ही तरंगे। धीरे धीरे मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ फरिश्ता रूप रच आकाश में, आकाश को चीरते हुए बादलों से पार, तत्वों से परे, अंतरिक्ष से भी परे, सूक्ष्म वतन में हूं। सफेद प्रकाश की दुनिया सम्मुख अव्यक्त बाप दादा, धीरे से आंखें खोलेंगे और बाबा से दृष्टि लेंगे। अपलक नयन, बाप दादा से अनंत शक्तियों की धाराएं मुझे आत्मा में आ रही। भगवान सम्मुख खड़ा है, जन जन की प्यास मिटी है, एकाग्र दृष्टि केवल उन आंखों को देखना है जिसमें प्रेम का सागर समाया हुआ। शरीर की कोई हलचल नहीं, बाबा ने अपना वरदानी हस्त सिर पर रख दिया है। विजयी भव, निर्विघ्न भव, जिसे किस दिन की भट्टी की मैं तैयारी कर रहा हूं, बाबा वरदान दे रहे सफलता मूर्त भव। यहां से जाते ही वो 21 दिन की भट्टी चालू होगी। जिसमें मुझे वो करना है जो अब तक नहीं किया, वो मेरी अपनी होगी केवल गुप्त भट्टी। बाबा शक्तियां भर रहे हैं, पूर्ण स्थिरता, मन शांत, अब फिर से आंखें बंद कर लेंगे। आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को देखेंगे जिनको हमने बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा पहुंचाई, सभी क्रोध में हैं। उन आत्माओं को देखेंगे जिन्हें हमें हमने असहयोग दिया, अपमान किया, इंसल्ट किया, असहयोग दिया, कटाक्ष कहे, कटु वचन बोले, निंदा की, गलत प्रचार किया। आंखें बंद और उन सभी आत्माओं से माफी मांगेंगे। हे आत्माओं, हे देव कुल की महान आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा करें। वो सारे चेहरे दिख रहे हैं कितने क्रोध में हैं, बदले का भाव उनके मन में है। हे आत्माओं, आई एम सॉरी, सच्चे दिल से माफी मांगेंगे। और ये क्या, वो सभी आत्माएं खुश हो रही हैं जैसे उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मन हल्का हो रहा है। दूसरी ओर वो सभी आत्माएं हैं जो मैं सोचता हूं, सोचती हूं कि इन्होंने मुझे दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, अपमान किया, असहयोग दिया, कटु शब्द किए। मैं इन सभी आत्माओं को माफ करता हूं क्योंकि यही परमात्मा आदेश है। और अच्छा ही हुआ इन्होंने जो किया, जन जन के हिसाब चुकते हुए। थर्ड ग्रुप, वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, दिल से शुक्रिया। लौकिक माता पिता, मित्र संबंधी, वो सेवा केंद्र की बहन जिसने कोर्स कराया, जो मधुबन ले आई, जो रोज मुरली सुनाती है, भगवान के महावाक्य सुनाने वाली वो महान आत्माएं, हमारी पालना करने वाली वो महान आत्माएं, सबका दिल से शुक्रिया। अब धीरे धीरे इसी फरिश्ता स्वरूप में अपने लौकिक घर या सेवा केंद्र पहुंचेंगे। अपने घर को अपने सामने इमर्ज करो। आंगन, वो द्वार, वो प्रथम द्वार, अपने घर का चक्कर लगाएंगे फरिश्ता रूप में। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही है। घर के लोग, घर की आत्माएं, घर की वस्तुएं, दीवारें, बर्तन, कपड़े, एक एक वस्तु पावन हो रही है। वो बिस्तर, वो बेडरूम शुद्ध हो रहा है। वो पैसे पावन हो रहे हैं। सेवा केंद्र निर्विघ्न हो रहा है। वो ऑफिस निर्विघ्न हो रहा है। वो रोज का ट्रैवलिंग, वो स्थान, वो रोड, वो सड़क, वो ट्रैफिक, वापस पहुंच जाओ बाबा की कुटिया में। सुबह के 2 बजे है, सन्नाटा है। बाबा, मौन मिलन, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, मधुबन का आंगन, डीप सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ समाते जा रहा है। ओम शांति भवन। वो सुबह की मुरली, वो डाइनिंग, वो क्लासेस, वो ब्राह्मणों का संग, वो भट्टी का वायुमंडल और ये शांत मन, सभी आंखें खोलेंगे और अपने अपने स्थान पर मौन में खड़े हो जाएंगे बिना आवाज किए। दृष्टि बाबा की तरफ, जो आसपास भाई है, बहने बहनों की तरफ, भाई भाई की तरफ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, दो हाथों से दो आत्माओं का हाथ हमारी तरफ देखते हुए, एक दूसरे का हाथ नहीं, इस तरह से एक रो बनेगी, एक चेन, एक हाथ से एक का, दूसरे हाथ से दूसरे का, आंखें बंद, आंखें बंद, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंग अंग में पवित्रता की किरणें दौड़ रही है, मेरे दोनों हाथों से इन दो आत्माओं के हाथों में प्यूरिटी की किरणें जा रही है, शरीर रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं, अखंड पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य, रोआ रोआ पावन हो रहा है, मन के कोने कोने में प्यूरिटी, सारे वायुमंडल में प्यूरिटी, सारे हॉल में केवल प्यूरिटी की तरंगे और परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की किरणें मुझ पर, पवित्रता का एक वर्तुल, अ सर्कल एंड ऑर्बिट ऑफ प्यूरिटी, शरीर की उत्तेजनाएं समाप्त, मन के गहराई में छिपी हुई वासनाएं नष्ट हो रही, मैं परम पवित्र आत्मा, शिव की जो अर्धांगिनी है मैं हूं, धीरे धीरे इसी अनुभव के साथ नीचे बैठ जाएंगे, बाबा से दृष्टि लेते हुए यादों में खो जाएंगे।